अब सुनते हैं पाठ वाक, पृष्ठ संख्या 95 से 99 तक। कवियत्री हैं ललद्यद।
ललद्यद कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवियत्री ललद्यद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पाम्पोर के सिंपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललद्यद को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललद्यद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है, जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललद्यद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललद्यद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललद्यद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उनके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललद्यद के चार वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में ललद्यद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य डंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक में कवयित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए सदकर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललद्यद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है।
एक,
रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे।
दो,
खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की।
तीन,
आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई।
चार,
थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिद से पहचान।
प्रश्न अभ्यास
एक,
रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है?
दो,
कवियत्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं?
तीन,
कवियत्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है?
चार,
भाव स्पष्ट कीजिए।
जेब टटोली कौड़ी ना पाई, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी।
पांच,
बंद द्वार की साकल खोलने के लिए ललद्यद ने क्या उपाय सुझाया है?
छह,
ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है?
7.
ज्ञानी से कवयित्री का क्या अभिप्राय है?
रचना और अभिव्यक्ति।
8. हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है।
क,
आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है?
ख,
आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए।
पाठेतर सक्रियता।
भक्ति काल में ललित द्यद के अतिरिक्त तमिलनाडु की आंदाल, कर्नाटक की अक्क महादेवी और राजस्थान की मीरा जैसी भक्त कवयित्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए एवं उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। ललित द्यद कश्मीरी कवयित्री हैं। कश्मीर पर एक अनुच्छेद लिखिए।
शब्द संपदा। वाक
यानी वाणी, शब्द या कथन। यह 4 पंक्तियों में बद्ध कश्मीरी शैली की गेय रचना है।
कच्चे सकोरे
अर्थात स्वाभाविक रूप से कमजोर।
रस्सी कच्चे धागे की
अर्थात कमजोर और नाशवान सहारे।
नाव
यहाँ अर्थ है जीवन रूपी नाव।
सम या शम
अर्थात अंतःकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह।
समभावी
अर्थात समानता की भावना।
खुलेगी सांकल बंद द्वार की
इसका अर्थ है चेतना व्यापक होगी और मन मुक्त होगा।
गई न सीधी राह
इसका अर्थ है जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चलती रही।
सुषुम सेतु
अर्थात सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी सुषुम्ना, जो नासिका के मध्य भाग अर्थात ब्रह्म रंध्र में स्थित है।
जेब टटोली
अर्थात आत्मालोचन किया।
कौड़ी न पाई
अर्थात कुछ प्राप्त ना हुआ।
माझी
अर्थात ईश्वर, गुरु या नाविक।
उतराई
यानी सदकर्म रूपी मेहनताना।
थल थल
अर्थात सर्वत्र।
शिव
यानी ईश्वर।
साहिब
यानी स्वामी या ईश्वर।